लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि वर्तमान युग के परिवारों को प्रेम, सम्मान और मार्गदर्शन मिलता रहे तथा वे दिन ब दिन अपने विश्वास में विकसित होते जाएं। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। स्तोत्र ग्रंथ 150 भजनों का संग्रह है। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते तो कुछ में ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा की याचना के गीत निहित हैं। कुछ ऐसे भी भजन हैं जिनमें प्रभु की कृपा, उनके अनुग्रह और अनुकंपा की याचना की गई है। इन भजनों में मानव की दीनता और दयनीय दशा का स्मरण कर करुणावान ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे कठिनाइयों को सहन करने का साहस दें और सभी बाधाओं को जीवन से दूर रखें। युवावस्था से मुझ पर बारंबार अत्याचार किया गया है। इसराइल यह दोहराए, युवावस्था से मुझ पर बारंबार अत्याचार किया गया है, फिर भी वे मुझ पर हावी नहीं हुए। हलवाहों ने मेरी पीठ पर हल चलाया, उन्होंने उस पर लंबी रेखाएं खींची। प्रभु न्यायी है, उसने विधर्मियों द्वारा बांधी रस्सियों को काटा है। जो सियों से बैर करते हैं वे लज्जित होकर हट जाएं। वे छत पर उगी घास जैसे हों जो बढ़ने से पहले सूख जाती है। उससे न तो घास काटने वाला अपना हाथ भरता और न पूले बांधने वाला अपनी बाहीं। उधर से गुजरने वाले यह नहीं कहते, प्रभु का आशीर्वाद आप पर हो। हम प्रभु के नाम पर आपको आशीर्वाद देते हैं। श्रोताओ, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 129वें भजन के शब्द। इसी भजन के पाठ से विगत सप्ताह हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। स्तोत्र ग्रंथ का 129वां भजन भी तीर्थयात्रियों का ही गीत है। इस गीत में एक बार फिर प्रभु के अनुपम कार्यों का स्मरण दिलाकर भजनकार भक्तों से कहता है कि वे उन सब अवसरों को याद करें जब प्रभु ईश्वर ने उनकी रक्षा की थी। वह स्मरण दिलाता है कि विरोधियों ने अत्याचार किए, किंतु हर बार प्रभु ईश्वर ने अपने भक्तों को शत्रुओं के फंदों से छुड़ाया। 129वें भजन में वस्तुतः इसराइल देश अपनी व्यथा सुनाकर याद करता है कि बारंबार प्रभु ईश्वर ने उसे शत्रुओं के फंदों से छुड़ाया। प्रभु ने उसे आशीर्वाद दिया और अनवरत आगे बढ़ते रहने की शक्ति प्रदान की। श्रोताओ, भजनकार इस गीत के द्वारा प्रभु भक्तों को स्मरण दिलाना चाहता है कि मिस्र की गुलामी के अधीन उन्होंने अपार कष्ट भोगा था और इस कष्ट से प्रभु ईश्वर ने ही उनका उद्धार कर उन्हें प्रतिज्ञात देश तक पहुंचाया था। प्रतिज्ञात देश तक 40 वर्षों वाली लंबी और दुर्गम यात्रा के दौरान भी प्रभु ईश्वर ही अपनी प्रजा के सहायक और उनका शरण स्थल बने थे। प्रतिज्ञात देश में आ जाने के बाद ईसा पूर्व 540वें वर्ष में इसराइलियों पर नबूखेत नजर के आक्रमण और अत्याचारों का स्मरण दिलाकर वह एक बार फिर प्रभु के महान कार्यों पर मनन चिंतन का आग्रह करता है तथा युग युगांतर तक के लोगों से कहता है कि वे भी अपने जीवन की घटनाओं पर चिंतन करें तथा उन सभी क्षणों की याद करें जब प्रभु ईश्वर की दया और उनकी अनुकंपा से वे शत्रुओं के जाल से बचे तथा उन्हें परास्त कर पाए। इस प्रकार 129वां भजन हम मनुष्यों का आह्वान करता है कि हम ईश्वर के महान कार्यों के लिए प्रतिपल उनका स्तुतिगान करते रहें तथा प्रभु के नाम पर अपने संपर्क में आने वालों को आशीर्वाद प्रदान किया करें।
धन्यवाद दूंगा भगवान, धन्यवाद दूंगा भगवान, धन्यवाद दूंगा भगवान, धन्यवाद दूंगा भगवान। परम विशाल सभा में तुझको धन्यवाद दूंगा भगवान, जन समूह के बीच करूंगा प्रभुवर मैं तेरा गुणगान, प्रभुवर मैं तेरा गुणगान, धन्यवाद दूंगा भगवान, धन्यवाद दूंगा भगवान।
आगे स्तोत्र ग्रंथ का 130वां भजन भी आरोहण का भजन है जिसे तीर्थयात्री सीयो पर्वत की ओर चढ़ते हुए गाते हैं। इस गीत में तीर्थयात्री प्रभु से पापों की क्षमा मांगते तथा उनकी असीम दया की मंगल याचना करते हैं। यह गीत इस प्रकार है, प्रभु गहरे गर्त में से मैं तेरी दुखाई देता हूँ, प्रभु मेरी पुकार सुन, मेरी विनती पर ध्यान दे, प्रभु यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा, तू पापों को क्षमा करता है इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूँ, मेरी आत्मा उसकी प्रतीक्षा पर भरोसा रखती है, भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती है। इज़राइल, प्रभु पर भरोसा रखो क्योंकि दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है, वही इज़राइल का उसके सब अपराधों से उद्धार करेगा। श्रोताओ, 130वां भजन वास्तव में पश्चाताप का गीत है। मनुष्य अपने हृदय की अतल गहराई से पश्चाताप की याचना करता है। 16वीं शताब्दी के विख्यात धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि संभवतः 130वां भजन संत पॉल द्वारा लिखा गया भजन है जो अपने अतीत के लिए प्रभु से क्षमा की याचना करते हैं। यही कारण है कि यह भजन मध्य युग से ही कलीसियाई धर्म विधि में पश्चाताप के गीत के रूप में प्रतिष्ठित है। प्रार्थी कहता है, प्रभु गहरे गर्त में से मैं तेरी दुहाई देता हूँ, प्रभु मेरी पुकार सुन, मेरी विनती पर ध्यान दे। वस्तुतः श्रोताओ, मानव जाति ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश है तथा मनुष्य स्वतः को कभी ऊपर की ओर यानी कि स्वर्ग की ओर तो कभी नीचे पाताल की ओर पाता है। वो अपने भावों को इस तरफ व्यक्त करता तथा अपने हृदय की अतल गहराई से प्रभु ईश्वर को पुकारता है। उसे लगता है कि उसकी आवाज इतने नीचे से ऊपर की ओर पहुंच नहीं पा रही है और इसीलिए ऊपर की ओर दृष्टि लगाकर प्रभु से याचना करता है। यह ध्यान रखना हितकर होगा कि सीयो पर्वत पर चढ़ते तीर्थयात्री जेरूशलेम की ओर दृष्टि लगाते हुए ऊपर की ओर बढ़ते हैं। भौगोलिक रूप से भी जेरूशलेम ऊपर की ओर बसा हुआ था। अस्तु तीर्थयात्री केवल शारीरिक रूप से ही नहीं अपितु आध्यात्मिक रूप से भी ऊपर की ओर आरोहित होते हुए तीर्थ यात्रा करते हैं। जेरूसलम के मंदिर की ओर बढ़ते हुए भक्त उस विश्व का ध्यान करता है जिसमें वह फंसा हुआ है, उस विश्व का ध्यान करता है जिसके ताने बानों से वह लिपट चुका है। उसे प्रतीत होता है कि वह तनाव से घिरा हुआ है, समस्याओं से घिरा हुआ है, और ईश्वर ही उसका आसरा और उसके उद्धार करता है। वह अपने पापों के लिए क्षमा मांगता तथा प्रभु की दया की प्रतीक्षा करते हुए कहता है, प्रभु यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा। तू पापों को क्षमा करता है इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। उसकी आत्मा प्रभु पर भरोसा रखती और प्रभु की राह देखती है। श्रोताओ, प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ में निहित 130वां भजन भले ही युगों पूर्व रचा गया गीत है, तथापि आज भी यह हम मनुष्यों के लिए समसामयिक है। आज भी इस भजन के शब्द हम सब पर लागू होते हैं, उन सब लोगों पर लागू होते हैं जो प्रभु पर भरोसा रखते हुए उनसे क्षमा और दया की अनवरत बाट जोहते तथा मुक्ति की कामना करते हैं।
धन्यवाद दूंगा भगवान, धन्यवाद दूंगा भगवान, उठ सचेत हो मेरे प्रभु अर, मेरी रक्षा को तैयार, उठ सचेत हो मेरे प्रभु अर, मेरी रक्षा को तैयार, मेरे स्वामी मेरे ईश्वर, मेरे हित का करो विचार, मेरे स्वामी मेरे ईश्वर, मेरे हित का करो विचार, मुझे नाथ निर्दोष सिद्ध कर न्याय नीत अनुसार, उन्हें न करने देना मेरी हंसी और मेरा अपमान। धन्यवाद।
आप वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने 9 जुलाई के ट्वीट संदेश में लिखा, विश्वास अपने में प्रेरितिक है अथवा यह विश्वास ही नहीं है। विश्वास हमें अपने से बाहर निकालता और दूसरी ओर ले चलता है। विश्वास को प्रसारित करने की आवश्यकता है जहां यह विश्वस्त नहीं होता बल्कि अपने को एक निधि स्वरूप अर्पित करता है। आइए हम ईश्वर से निवेदन करें कि वे हमें अपने विश्वास को खुले द्वार के रूप में जीने हेतु प्रेरित करें। विश्वास हमारे लिए एक पारदर्शी बने। सेवानिवृत्त संत पापा बेनेडिक्ट 16वें के भाई पुरोहित जॉर्ज रात्सिंगर की दफन धर्म विधि गुरुवार को जर्मनी के संत पीटर महागिरजाघर रेंसबर्ग में संपन्न हुई। उनकी मृत्यु 96 वर्ष की आयु में 1 जुलाई को रेंसबर्ग अस्पताल में हो गई थी, जहां उन्होंने अपने जीवन के अधिकतम समय को व्यतीत किया था। अपने भाई की देहावसान के ठीक एक सप्ताह पहले संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने अपने बुजुर्ग पुरोहित भाई से मुलाकात की थी। सेवानिवृत्त संत पापा के प्रिय भाई की मृत्यु पर संत पापा फ्रांसिस ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से संवेदना अर्पित करते हुए अपनी प्रार्थना और सामीप्य प्रकट किया था। अंतिम विदाई की धर्म विधि रीजन्स बर्ग के धर्माध्यक्ष रुडोल्फ वोल्डर होल्जर के द्वारा संपन्न की गई। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने अपने भाई जॉर्ज रात्सिंगर की अंतिम विदाई हेतु उनके बुलाहट और संगीतज्ञ के रूप में उन्हें एक भावभीनी पत्र प्रेषित किया। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने अपने कृतज्ञता के भाव जाहिर करते हुए लिखा, कई देशों के सामाजिक और पेशेवर पृष्ठभूमि के लोगों ने इस समय मुझे अपनी संवेदना व्यक्त की है जो मेरे दिल को छू गया है। व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें जवाब देने में असमर्थ हूँ। उन्होंने उन सभी लोगों को भी धन्यवाद दिया जो पिछले हफ्तों के दौरान दिवंगत भाई के साथ दृश्य और अदृश्य रूप से जुड़े हुए थे। उन्होंने लिखा, उनके जीवन और काम की प्रतिध्वनि जो मुझे इन दिनों के तार पत्र और ईमेल के रूप में मिल रही है, जिनकी कल्पना मैं कर सकता था। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने अपने भाई के तीन गुणों का जिक्र करते हुए लिखा, उनके भाई ने पुरोहित और संगीतज्ञ के रूप में अपनी बुलाहट को भली भांति समझा और जिया। अतीत की बातों को याद कर उन्होंने लिखा कि उनके भाई ने जीवन के शुरुआती वर्षों से ही टीम मॉर्निंग में खुद को संगीत में अच्छी तरह से प्रशिक्षित करने की व्यक्तिगत पहल की। अपने भाई के दूसरे गुण की चर्चा करते हुए संत पापा बेनेडिक्ट लिखते हैं, उनका खुश मिजाज स्वभाव, उनका हास्य और सदा खुश रहना सृष्टि के उपहारों में से एक था। वे स्पष्टवादी व्यक्तित्व थे और उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता को खुले रूप में व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, उनके दिवंगत भाई ईमानदारी और संयम के केंद्र थे। वे सदैव ईश भक्त व्यक्तित्व बने रहे। अपने भाई से अपनी अंतिम मुलाकात की याद करते हुए उन्होंने कहा, जब उन्होंने 22 जून को अंतिम विदाई कही तो वे इससे वाकिफ थे कि यह उनकी पृथ्वी पर अंतिम पड़ाव थी। फिर भी उन्होंने इस बात पर विश्वास किया कि ईश्वर, जिन्होंने उन्हें इस दुनिया में जीवन दिया है, जो दूसरी दुनिया में राज्य करते हैं, उन्हें नए रूप में पुनः मिलाएंगे। अंत में उन्होंने लिखा, मैं उन्हें अपने जीवन के अंतिम दिनों में फिर से उनके साथ रहने की अनुमति देने के लिए उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। उधर यरूशलेम में कलीसियाई अधिकारियों ने इसराइल सरकार से ऐतिहासिक शहर में ईसाई धरोहर की अखंडता, पवित्र स्थलों और यरूशलेम में ईसाई निवासियों के अधिकारों की रक्षा का आह्वान किया है। कस्टडी ऑफ द होली लैंड द्वारा जारी एक संयुक्त विज्ञप्ति में धार्मिक नेताओं ने हाल ही में यरूशलेम के जिला न्यायालय द्वारा सत्तारूढ़ होने के बारे में चिंता व्यक्त की। सत्तारूढ़ ने ग्रीक ऑर्थोडॉक्स कलीसिया द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों को खारिज कर दिया है, जो कि यहूदी राष्ट्रवादी संघ के एरेत कोहनीम को साबित कर सकता था, जिन्होंने जाफा गेट के पास गैर पारदर्शी और धोखाधड़ी से संपत्ति खरीदी है। यरूशलेम के 13 कलीसियाई मुख्य अधिकारीगण लिखते हैं कि जाफा फाटक का मामला यथास्थिति हेतु खतरे की स्थिति है, जो न्याय के लिए अपनी अपील में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स कलीसिया का समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि यह संपत्ति पर एक साधारण विवाद नहीं है, बल्कि जाफा फाटक के पास संपत्तियों का नियंत्रण कट्टरपंथी समूहों द्वारा पवित्र शहर की अखंडता को कमजोर करने, ईसाई तीर्थयात्रियों के लिए रास्ता बाधित करने और यरूशलेम में ईसाई उपस्थिति को कमजोर करने का एक तथा कथित प्रयास है। उधर वैटिकन ने प्रवासियों और शरणार्थियों के संबंध में इस बात हेतु अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है कि मानव जीवन की सुरक्षा और उनके सम्मान हेतु ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। उक्त बातें महाधर्माध्यक्ष इवान जुरकोविक ने मंगलवार को जेनेवा में शरणार्थियों हेतु उच्च आयोग समिति द्वारा आयोजित एक बैठक के दौरान दस्तावेज, पुनरावासन और पूरक रास्ते के संबंध में कही। पूरक रास्ते सुरक्षित और विनियमित हैं, जिनके द्वारा शरणार्थियों को किसी देश में प्रवेश करने दिया जा सकता है और उनकी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं, जबकि वे संभावित और स्थायी समाधान तक पहुंचने के लिए खुद को सुयोग्य बनाने में सक्षम होते हैं। महाधर्माध्यक्ष ने खेद व्यक्त किया कि अधिकांश शरणार्थी अपने परिवार और भविष्य को लेकर अनिश्चित हैं। वे अपने दैनिक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हैं। कई एक को अवरोधक केंद्रों तक सीमित कर दिया जाता है, जहां वे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सम्मानजनक रोजगार के अवसरों से वंचित हो जाते हैं। इस तरह वे मानव तस्करी और आधुनिक समय की गुलामी के अपराधों के शिकार होते हैं। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।